धवला पुस्तक चौदवी लेक्चर नंबर दो। ओम नमः सिद्धेभ्य ओम नमः सिद्धेभ्य ओम नमः सिद्धेभ्य ओम श्रुतात्मने नमः नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरियाणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सौवसाहूणं सिद्धे विमुक्तसयले अज्जत्थबहिष्ठबन्धनं मुक्ते भक्तिये अहं नम्यूं पुनो पुनो बंधनम मोचम। आचार्य श्री वीरसेन स्वामी रचित यह धौला नामक टीका है जो षटखंडागम ग्रंथ पर लिखी हुई है, जिसके कर्ता है पुष्पदंत और भूतबली आचार्य। इसमें जो पांचवा खंड है उसका नाम है वर्गणा खंड, और उसमें भी हम बंधन अनियोग द्वार को देख रहे हैं। चौदहवीं पुस्तक के पृष्ठ संख्या 10 पर हम आ गए हैं। 10 दस नंबर का पृष्ठ है। अभी हम सूत्र पढ़ने जा रहे हैं। देखो ऊपर जो है ना, कल हमने ये बात देखी थी। देखो पेज के पीछे के पेज पर देखना, सूत्र में देखेंगे। यहाँ अपने निक्षेपों की चर्चा चल रही थी। भावबंध हमने दो प्रकार का देखा था, आगम भावबंध और नो आगम भावबंध। आगम में याद है हमें तो 9 प्रकार का आगम देखा और फिर 8 प्रकार के उसका उपयोग देखा, और वो उससे युक्त जीव जो है वो पूरा ही उसको आगम भावबंध कहते हैं। नो आगम भावबंध 2 प्रकार का है। 9 पेज पर मैं नीचे के सूत्र की बात देख रही हूँ, 13 नंबर सूत्र के जीव भावबंध और अजीव भावबंध। अब जीव भावबंध है वो 3 प्रकार का है, विपाक प्रत्ययिक जीव भावबंध, अविपाक प्रत्ययिक जीव भावबंध और तदुभय प्रत्ययिक जीव भावबंध। अब यहाँ कहते हैं कि कर्मों के उदय उदीरणा को विपाक कहा था, यानी विपाक जिस भाव का कारण है, प्रत्यय ने कारण है, यानी कर्म के उदय के कारण होने वाले भाव को यहाँ विभाव प्रत्येक जीव भावबंध कहा, और कर्म के उदय उदीरणा के अभाव को अविपाक कहा। जैसे उपशम और क्षय अवस्था में उसका अभाव पाया जाता है तो वो जिसका कारण है उसको अविपाक प्रत्येक जीव भावबंध कहा, और जो उनके इस कॉम्बिनेशन होगा उदय उदीरणा भी और उपशम भी है उसको तदुभय प्रत्येक कहा। तदुभय प्रत्यय में क्षोभम उसका अर्थ किया था। अब हम नया सूत्र पढ़ने जा रहे हैं। जो सो विवाग पच्चयो जीव भाव बंधो नाम तस्य इमो निर्देशो, यहाँ एक डैश चाहिए, देवेत्ति वा मनुष्येत्ति वा तिरिक्थेत्ति वा निरयित्ते वा इत्थि वेदेत्ति वा पुरुष वेदेत्ति वा नौसे वेदेत्ति वा कोह वेदेत्ति वा मान वेदेत्ति वा माय वेदेत्ति वा लोह वेदेत्ति वा राग वेदेत्ति वा दोष वेदेत्ति वा मोह वेदेत्ति वा किन्न लेस्यति वा नील लेस्यति वा काउ लेस्यति वा तेउ लेस्यति वा पम्म लेस्यति वा शुक्क लेस्यति वा असंजदेत्ति वा अविरदेत्ति वा अनन्यत्ति वा मिच्छादिट्ठित्ति वा जे चामण्णे एवं आदिया कम्मोदय पच्चया उदय विभाग निपन्ना भावा सो सौवो विभाग पच्चयो जीव भाव बंधो नाम। ये जो हमने लिस्ट पढ़ी थी उसको पढ़कर कुछ याद आता है, ये नाम किसके हो गए सारे? अकेले मोहनी की नहीं, हाँ औदयिक भाव याद है उसमें। हाँ उसके उदय में वह जो होते हैं, और वो जीव भाव बंध लेना है ना।
अच्छा यहाँ पे
यहाँ
चार गति।
हाँ देव भाव मनुष्य भाव ये गति गति उदय हमने चार गति तीन वेद क्रोधमान माया लोभ वगैरह देखते हैं ना, ये सब है इसमें, यही छह लेशा और फिर बाद में अज्ञान दर्शन संयम अज्ञान असंयम अविरत, यहाँ असंयत और अविरत दो अलग अलग लिखे। तो ये सब क्या है, तो उदयिक भाव है, अभी हम देखेंगे यहाँ पर। यानी जीव कर्म के उदय जिसमें निमित्त है इसे जीव के भाव वो उदयिक भाव। यहाँ गति को नहीं कहा, गति भाव लेना, जीव के गति संबंधी जो भाव है उसको यहाँ लेते हैं। अब हम हिंदी में पढ़ते हैं, देखो जो विभाव प्रत्येक जीव भाव बंध है उसका निर्देश इस प्रकार है। भाव बंध है ने भाव निक्षेप रखा है ना, जीव के भाव, जीव उस भाव रूप से परिणत हुआ है परंतु उसमें कर्म का उदय निमित्त है। तो जो जीव विभाव प्रत्येक जीव भाव बंध है उसका निर्देश इस प्रकार है, देव भाव मनुष्य भाव तिर्यंच भाव नारक भाव, जिसको हम गति औदयिक भाव भी कहते हैं, स्त्री वेद पुरुष वेद नपुसक वेद क्रोध वेद मान वेद माया वेद लोभ वेद राग वेद दोष वेद मोह वेद। यहाँ राग द्वेष और मोह को अलग से बताया है। कृष्ण लेशा नील लेशा कापोत लेशा पीत लेशा पद्म लेशा शुक्ल लेशा, ये छह लेशा हो गए। असंयत भाव अविरत भाव अज्ञान भाव और मिथ्या दृष्टि भाव, तथा इसी प्रकार कर्मोदय प्रत्येक उदय विपाक से उत्पन्न हुए और जितने भाव है एटसेट्रा कहकर और जितने भी भाव कर्म के उदय में होने वाले हैं वे सब विभाव प्रत्येक जीव भाव बंध है। अब उसको समझाएंगे। देवगति नाम कर्म के उदय से जो अणिमा आदि गुणों को प्राप्त करता है वह देव भाव है। वह अणिमा लघिमा आदि जो कुछ जीव के जो विशेषताएं प्राप्त होती हैं। मनुष्य गति नाम कर्म के उदय से अणिमा आदि गुणों से रहित मनुष्य भाव होता है। तिर्यंच गति नाम कर्म के उदय से तिर्यंच भाव होता है। नरक गति नाम कर्म के उदय से नारक भाव होता है। यानी उस गति वाले उस पर्याय वाले जीवों के जो कुछ भाव पाए जाते हैं वो गति औदयिक भाव कहलाते हैं। स्त्री वेद कर्म के उदय से स्त्री वेद रूप भाव होता है। पुरुष वेद भाव विभाव प्रत्येक है क्योंकि वह पुरुष
विपाक प्रत्येक
विपाक, मैंने विभाव कहा का अभी मैंने सूत्र में पढ़ा था मैंने। इसी प्रकार कर्मोपरय प्रत्येक उदय विपाक से उत्पन्न हुए और जितने भाव है वे सब विपाक प्रत्येक जीव भाव बंध है। अभी तो विपाक अभी शब्द आया है पुरुष वेद में। पुरुष वेद भाव विपाक प्रत्येक है क्योंकि वह पुरुष वेद के उदय से उत्पन्न होता है। नपुसक वेद भाव वो बराबर छपा है क्या, विपाक प्रत्येक है क्योंकि वह नपुसक वेद कर्म के उदय से उत्पन्न होता है। क्रोध मान माया और लोभ ये भाव भी विपाक प्रत्येक होते हैं क्योंकि ये भाव क्रोध मान माया और लोभ रूप द्रव्य कर्मों के विपाक से उत्पन्न होते हैं। यानी वहां कर्मों का उदय पाया जाता है। पेज नंबर 11। राग भी विपाक प्रत्येक होता है क्योंकि इसकी उत्पत्ति माया लोभ हास्य रति और तीन वेद रूप द्रव्य कर्मों के विपाक से होती है। देखो आपको पूछा जाता है ना हमेशा ये क्रोध मान माया लोभ जो 16 जो कषाय है नौ कषाय है उसमें से राग रूप कितने हैं और द्वेष रूप कितने हैं। तो यहाँ लिखा देखो माया लोभ यानी सभी माया के और सभी 25 में अगर डिवाइड करना है तो हाँ जो 16 टोटल होते हैं 4 × 16 तो उसमें से चार प्रकार की माया चार प्रकार के लोभ फिर हास्य रति और तीन वेद। ये क्या है सब राग रूप है। दोष भी विपाक प्रत्ययिक होता है क्योंकि इसकी उत्पत्ति क्रोध मान अरति शोक भय जुगुप्सा रूप द्रव्य कर्म के विपाक से होती है। पांच प्रकार का मिथ्यात्व, वो मिथ्यात्व लिखा है, मिथ्यात्व करना, सम्यक मिथ्यात्व और सांसाधन सम्यक्त्व मोह कहलाते हैं। अच्छा, तीनों को मोह कहा, क्या है मिथ्यात्व, सम्यक मिथ्यात्व और सांसाधन सम्यक। वह भी विपाक प्रत्ययिक होता है क्योंकि इसकी उत्पत्ति मिथ्यात्व, सम्यक मिथ्यात्व और अनंतानुबंधी रूप द्रव्य कर्म के उदय से होती है। जब हम गुणस्थान की चर्चा करते हैं तो सांसाधन को दर्शन मोहनी की अपेक्षा पारिणामिक भाव भी कहा है, पर दर्शन मोहनी की अपेक्षा, और अनंतानुबंधी की अपेक्षा कहेंगे तो औदयिक भाव ही है, इसलिए यहाँ औदयिक लिया उसको। कृष्ण नील कापोत पीत पद्म और शुक्ल लेशा भी विपाक प्रत्येक होती है क्योंकि छह लेशाओं की उत्पत्ति अघाती कर्मों में से तत्प्रायोग्य द्रव्य कर्म के उदय से। तत्प्रायोग्य क्यों कहा,
तो वहाँ पे जो भी उदय होता है,
कौन सा उदय पाया जाता है, शरीर नाम कर्म के उदय से, यानी वो लेशा क्या है, कषाय से अनुरंजित योग की प्रवृत्ति होती है, इसलिए तत्प्रायोग्य द्रव्य कर्म के उदय से और कषाय के उदय से होते, दोनों उदय लिया ना, यानी शरीर नाम कर्म और कषाय। शरीर नाम कर्म का उदय जो है वो योग में निमित्त है और ये कषाय है वो, तो ये दोनों मिलकर वहाँ लेशा पाई जाती है। असंयत भाव भी विपाक प्रत्येक होता है क्योंकि यह संयम का घात करने वाले कर्मों के उदय से उत्पन्न होता है। और अविरत भाव भी विपाक प्रत्येक है क्योंकि यह देश विरति और सकल विरति के घातक कर्मों के उदय से उत्पन्न होता है। तो हमें तो यही प्रश्न उठा ना, असंयम और अविरत एक ही अर्थ में आता है, यही प्रश्न पूछा जाता है, संयम और विरति में क्या भेद है। समितियों के साथ महाव्रत और अनुव्रत संयम कहलाते हैं और समितियों के बिना महाव्रत और अनुव्रत विरति कहलाते हैं, यही इन दोनों में भेद है। अच्छा, समिति के साथ और समिति के बिना ऐसा लिया है। हाँ, पांच समिति के साथ महाव्रत, पर अनुव्रत भी वो समितियों के साथ लिया उन्होंने। ये याद नहीं था, पहले पढ़ा था, पर संयम और विरति में भेद, हम असंयत और अविरत एक ही अर्थ में लेते हैं ना। मैंने संयम में समिति के साथ लिया और केवल व्रत है, विरति है, पर समिति नहीं है तो उसको व्रत लिया। यानी व्रत प्लस समिति मिलकर संयम होता है, इनका अर्थ है ना। अकेले व्रत है उसको विरति कहा, और विरति प्लस संयम को विरति प्लस समिति को संयम कहा।
तो पांचवे गुणस्थान वर्ती जीव को समितियों का पालन नहीं भी होता,
पालन करेंगे ना ऐसा। अभी वो तो भले वो गुणस्थान नहीं चढ़ा है परंतु समिति का पालन करके वो फिर मुनि दीक्षा भी लेंगे। अभी यहाँ तो लिखा है ना ऐसा, उनके योग्य समिति वहां पर भी होगी। जैसे वहां व्रत होते हैं वहां उनके योग्य समिति भी होगी कि नहीं होगी, देख शोध कर वो जो सावधानी पूर्वक के भाव उनके भी हो गए है ना। अज्ञान भाव भी विपाक प्रत्ययिक होता है क्योंकि यह मिथ्यात्व के उदय से अथवा ज्ञानावरण के उदय से उत्पन्न होता है। ऐसा क्यों कहा अथवा करके उनको क्या कहना चाहते हैं?
अज्ञान।
हाँ, मिथ्यात्व के उदय से अवदय का ज्ञान होता है और ज्ञानावरण के उदय से कौन सा अज्ञान होता है? यहाँ लिखा है ना, अज्ञान भाव भी विपाक प्रत्येक होता है क्योंकि यह मिथ्यात्व के उदय से अथवा अथवा ज्ञानावरण के उदय से औदय, यह अज्ञान जो है वो मिथ्या ज्ञान है। पहला जो मिथ्यात्व वाला अज्ञान है वो मिथ्या ज्ञान है। हाँ, वही तो कह रही हूँ मैं।
अच्छा, वो मिथ्या ज्ञान है, वो उल्टा ज्ञान है।
वो मिथ्या ज्ञान है और क्षौक्षमिक यानी जो अज्ञान जो है, हाँ वो औदयिक है, उसके उदय के कारण। यानी दोनों को यहाँ औदयिक में लिया है, परंतु वहाँ मिथ्यात्व के उदय से होने वाला वो मिथ्या ज्ञान, उसको भी मिथ्यात्व के उदय के कारण औदयिक में लिया, परंतु उसको हम मिथ्या ज्ञान इतना ही कहेंगे। और औदयिक अज्ञान जो है वो क्षोभसम उस संबंधी का आवरण है, इसलिए वो औदयिक अज्ञान होता है। मिथ्यात्व भी विपाक प्रत्येक होता है। पेज नंबर 12, ये सब विपाक प्रत्येक जीव भावों की चर्चा चल रही है, जो सारे औदयिक भाव भी कहलाने में आते हैं उसकी यहाँ चर्चा चल रही है। प्रत्यय ने कारण, विपाक प्रत्यय, विपाक प्रत्यय ने कर्म का उदय जिसमें कारण है, क्योंकि वो उदय से ही वो औदयिक भाव कहलाते हैं ना। कारण यानी निमित्त कारण लेना। यहाँ पर देखो, मिथ्यात्व भी पेज नंबर 12 पर विपाक प्रत्ययिक होता है। प्रत्ययिक का अर्थ उसके निमित्त से होने वाला, प्रत्ययिक। जैसे नैमित्तिक शब्द आता है ना, वैसे प्रत्ययिक, क्योंकि यह मिथ्यात्व के उदय से उत्पन्न होता है। इसी प्रकार कर्मोदय प्रत्ययिक, उदय विपाक निष्पन्न और जितने भाव होते हैं वे सब विपाक प्रत्ययिक जीव भाव बंध कहलाते हैं। यानी कर्म के उदय में होने वाले जीव के भाव को लेना है। कर्म के उदय में होने वाले पुद्गल की भी, पुद्गल विपाकी भी होते हैं ना, उसकी यहाँ चर्चा नहीं है। जीव विपाकी लेना यहाँ खास करके। विशेषार्थ, प्रकृत में प्रत्यय शब्द निमित्तवाची है। यहाँ देव भाव, मनुष्य भाव आदि जितने भाव गिनाए हैं, अभी ये जो पूरी लिस्ट हमने देखी ना, उसमें गति भी लिए, कषाय भी लिए, वेद भी लिए, लेशा भी लिए, सब जो भाव लिए हैं, ये सब विवक्षित कर्म के उदय और उदीर्णा के निमित्त से होते। विवक्षित ने वो अपना अपना जो कोई कर्म वहाँ होगा वो कर्मों के नाम बताए हैं, इसलिए इन्हें विपाक प्रत्ययिक जीव भाव बंध कहा है। क्योंकि बंध के प्रकरण में हम भाव निक्षेप लगा रहे थे ना, पेज नंबर 12 पर हम पढ़ रहे हैं, विशेषार्थ को पढ़ रहे अभी। तो विपाक प्रत्येक जीव भाव बंध, जीव भाव बंध ने, देखो ये कौन से भाव बंध की बात है? पहले तो हमने आगम देखे, अब ये नौ आगम की बात करें। नौ आगम में ये विपाक प्रत्येक लिए जीव भाव बंध। यहाँ ये कुल 24 भाव गिनाए हैं, जबकि तत्वार सूत्र में कुल 21 भाव ही गिनाए हैं। तीन कौन से यहाँ? राग, द्वेष और मोह एक्स्ट्रा गिनाए हैं। वहां तो क्रोध, मान, माया, लोभ में तो वो आते ही है, परंतु यहाँ राग कहने से क्या क्या लिया? माया, लोभ, हास्य रति और तीन वेद, और द्वेष कहने से क्रोध, मान, फिर अरति, शोक, भय, जुगुप्सा। और मोह किसको कहा यहाँ पर? मिथ्यात्व, सम्यक मिथ्यात्व और अनंतानुबंधी, पहले तीन गुणस्थान में जो औदयिक भाव बताया ये एक्स्ट्रा यहाँ गिना है। इसी प्रकार देखो, नहीं, हम पढ़ रहे थे ऊपर, 21 भाव ही गिनाए हैं, है ना? तत्वार सूत्र में गिनाए गए भावों में से असिद्धत्व भाव यहाँ नहीं गिनाया है, और यहाँ राग, द्वेष, मोह और अविरति, ये चार भाव अतिरिक्त गिना, एक्स्ट्रा ये चार हुए, क्योंकि असंयम भी कहा और अविरति भी कहा। इनमें से यद्यपि अविरति भाव का सामान्यतः असंयत भाव में अंतर्भाव किया जा सकता है, पर शेष तीन भावों के गिनाने में विशिष्ट दृष्टिकोण की प्रतीति होती है। नौ कषायों के नौ भेद हैं, उनमें से रति आदि के उदय से होने वाले भावों का तत्वार सूत्र में दर्शन नहीं होता, दर्शन वो नहीं गिनाए हैं, जबकि यहाँ इन भावों का राग और दोष में अंतर्भाव हो जाता है। इसी प्रकार सासादन भाव और सम्यक मिथ्यात्व भाव की परिगणना यानी उसकी गणना तत्वार सूत्र में नहीं की गई है, जबकि यहाँ इनका अंतर्भाव मोह में हो जाता है। एक बात अवश्य है, यहाँ असिद्धत्व भाव नहीं गिनाया है, पर इसके साथ यहाँ इसी प्रकार और दूसरे भावों के ग्रहण करने की सूचना अवश्य की है, यानी और भी जो जो कर्मों के उदय में होने वाले जीव के भाव है वो भी समझ लेना, इस तरह से उन्होंने बताया था, इसलिए कोई हानि नहीं है। आशय यह है कि यहाँ औदयिक भावों का विचार करते समय उस दृष्टिकोण को अपनाया गया है जिससे प्रायः सभी भावों का ग्रहण हो जाता है। अब हमने जीव भाव बंध तीन प्रकार के देखे थे, कौन से देखे थे? विपाक प्रत्ययिक देखे थे, अविपाक प्रत्ययिक और तदुभय प्रत्ययिक, उसी की अभी चर्चा करेंगे 16 नंबर के सूत्र में। जो सो अविवाग पच्चयो जीव भाव बंधो नाम सो दुविहो, वो समयो अविवाग पच्चयो जीव भाव बंधो चेव, खयो अविवाग पच्चयो जीव भाव बंधो चेव। अविपाक प्रत्यय यानी कर्म का विपाक उदय नहीं है, उदय नहीं है तो क्या है? उपशम है या क्षय है? तो कहते हैं अविपाक प्रत्यय, ऊपर पढ़ रहे थे ना, जो सो अविवाग पच्चयो जीव भाव बंधो नाम सो दुविहो, वसमियो अविवाग पच्चयो जीव भाव बंधो चेव, खयो अविवाग पच्चयो जीव भाव बंधो चेव। कौन से? औपशमिक और क्षय। देखो नीचे पढ़ते, अविपाक प्रत्ययिक जीव भाव बंध दो प्रकार का है, औपशमिक अविपाक प्रत्येक जीव भाव बंध और क्षायिक अविपाक प्रत्येक जीव भाव बंध। इस तरह दो प्रकार का ही अविपाक प्रत्येक जीव भाव बंध होता है, यानी औपशमिक और क्षायिक भावों को यहाँ गिनाया है। शंका, जीवत्व भव्यत्व और अभव्यत्व आदिक जीव भाव पारिणामिक भी है, उनका यहाँ क्यों कथन नहीं किया? उसका समाधान, यानी जीव के भाव है ना, उसकी यहाँ क्यों नहीं चर्चा की? कहते हैं आयु आदि प्राणों का धारण करना जीवन है, वह अयोगी के अंतिम समय से आगे नहीं पाया जाता, क्योंकि सिद्धों के प्राणों के कारणभूत आठों कर्मों का अभाव है, इसलिए सिद्ध जीव नहीं है, अधिक से अधिक वे जीवित पूर्व कहे जा सकते हैं। शंकाकार पूछते, सिद्धों के जीवत्व क्यों नहीं स्वीकार किया जाता? उसी का वो आंसर, इसीलिए सिद्धों में अगर नहीं हो जाता तो अन्य कुछ जीवों में होता है, कुछ में नहीं होता, ये बात उन्होंने कुछ बताना चाहते, पूरा पढ़ेंगे तो ख्याल में आएगा, यानी वो पारिणामिक क्यों नहीं लेते इसकी बात कर रहे हैं। किसी अपेक्षा अपेक्षावश वो जो प्राणों का धारण करना उसको जीवत्व कहते, अगर तो सिद्धों के जीवत्व घटित नहीं हो रहा, एक बात है। तो शंकाकार ने पूछा सिद्धों के जीवत्व क्यों नहीं स्वीकार किया जाता? ये कौन सा जीवत्व लिया? ये द्रव्य प्राण के कारण जो जीवत्व होता है वो सिद्धों के नहीं है, जो हम जीवन मरण कह रहे हैं ना वैसे की बात चल रही है यहाँ पर। तो उसका समाधान क्या है? नहीं, क्योंकि सिद्धों में जीवत्व उपचार से है और उपचार को सत्य मानना ठीक नहीं है। आगे नीचे देखो, सिद्धों में प्राणों का अभाव अन्यथा बन नहीं सकता, इसलिए मालूम पड़ता है कि जीवत्व पारिणामिक नहीं है, क्योंकि वह कर्म के विपाक से उत्पन्न होता है। यहाँ कौन सा जीवत्व लेना है? वो द्रव्य प्राण के कारण उत्पन्न होने वाला जीवत्व को यहाँ जीवत्व कहकर ये चर्चा चल रही है, क्योंकि जो जिसके सद्भाव और असद्भाव का अविनाभावी होता है वह उसका है, ऐसा कार्य कारण भाव के ज्ञाता कहते हैं, ऐसा न्याय है। इसलिए जीव भाव औदयिक है यह सिद्ध होता है। तत्वार सूत्र में जीवत्व को जो पारिणामिक कहा है वह प्राणों को धारण करने की अपेक्षा नहीं कहा है, किंतु चैतन्य गुण की अपेक्षा से वहां वैसा कथन किया है, इसलिए वह कथन भी विरोध को प्राप्त नहीं होता। जहां जीवत्व को पारिणामिक कहा है वो चैतन्य गुण की अपेक्षा से, जिसको हम भाव प्राण कहते हैं, जानन रूप जो कार्य वो तो हमेशा ही पाया जाता है, इसलिए उसको कहा है कि पारिणामिक। परंतु यहाँ जो चर्चा चल रही है कि जीवत्व भव्यत्व और अभव्यत्व वगैरह को पारिणामिक है, उसका यहाँ क्यों नहीं कथन किया, जीव भाव बंध में उसको क्यों नहीं लिया है, तो कहते सिद्धों को जीवत्व नहीं होता। कौन सा जीवत्व नहीं होता? द्रव्य प्राणों के कारण जिसको हम जीवत्व कहते हैं वो सिद्धों में नहीं पाया जाता। एक बात, सिद्धों में नहीं पाया जाता है, इन्हें अन्य जीवों में पाया जाता है, वो क्यों होता है? तो कर्मों के कारण होता है, इसलिए उसको कर्म के कारण मानना पड़ेगा, पारिणामिक नहीं मान सकते। ये इसे उल्टा उल्टा करके वो घटित क्या करना चाहते हैं, वो जीवत्व को पारिणामिक नहीं कह रहे। अब कहते चार अघाती कर्मों के उदय से उत्पन्न हुआ असिद्ध भाव है वह दो प्रकार का है, अनादि अनंत और अनादि शांत। यानी भव्यत्व अभव्य की बात बता रहे हैं। यानी चार अघाती कर्मों के उदय में असिद्ध भाव जो है वह अनादि अनंत असिद्ध है और कोई अनादि शांत है। इनमें से जिनके असिद्ध भाव अनादि अनंत है वे अभव्य हैं, और जिनके दूसरे प्रकार का है, कौन सा? अनादि शांत वाला, वे भव्य है। इसलिए भव्यत्व और अभव्यत्व ये भी विपाक प्रत्येक ही है। यहाँ क्या कहना चाहते हैं, किसी अपेक्षा उनको विपाक प्रत्येक ही सिद्ध कर रहे। क्यों? जिनके तो असिद्धत्व भाव ये कर्मों के उदय से है, तो कहते जो इनको असिद्धत्व भाव अनादि अनंत रहेगा वो अभव्य है, और जिनका असिद्धत्व भाव अनादि शांत है वो भव्य है। इसलिए दोनों ही क्या है? कर्मों के उदय में। इसको भी पारिणामिक स्वीकार नहीं किया, ये अपेक्षावश यहाँ ले रहे। शंका, तत्वार सूत्र में इन्हें पारिणामिक कहा है, इसलिए इस कथन का उसके साथ विरोध कैसे नहीं होगा? समाधान, नहीं, क्योंकि असिद्धत्व का अनादि अनंतपना और अनादि शांतपना निष्कारण है यह समझकर उन्हें वहां पारिणामिक स्वीकार किया गया है। क्या कहना चाहते हैं? वो असिद्धत्व भाव कर्मों के कारण है, परंतु वो अनादि अनंत क्यों रहता है और अनादि शांत क्यों रहता है वो किसी कर्म के कारण नहीं है। थोड़ी सूक्ष्म पॉइंट ख्याल में आए? असिद्धत्वपना कर्म के कारण है, परंतु वो असिद्धत्वपना अनादि अनंत रहता है कि अनादि शांत हो जाता है वो किसी कर्म के कारण नहीं है, इसलिए वहां पारिणामिक स्वीकार किया है। परंतु ये असिद्धत्वपना है जिसका कायम रहता है वो अभव्य, और जिसका शादी अनादि शांत हो जाता है वो भव्य, इस अपेक्षा से उसको कर्मों के विपाक के प्रत्यय के कारण होने वाला मान लिया है। यहाँ ये जीवत्व भव्यत्व अभव्यत्व को पारिणामिक क्यों नहीं कहा, उसकी चर्चा क्यों नहीं की? तो कहते वो कर्म के विपाक उसमें निमित्त उस रूप से आ जाते हैं। तो पहले हमने दो देखे थे ना, उपशमिक अविपाक और क्षायिक अविपाक।
तो यहाँ पे भव्य और अभव्य भी अघाती कर्मों के उदय के लिए,
अघाती नहीं, आठवीं कर्मों के उदय से असिद्धत्व भाव होता है, परंतु बाद में वो तो चार अघाती तो रहते ही रहते हैं ना, इस तरह से उसको लेना है। लास्ट में सिद्ध होता है तो क्या होता है?
आठों कर्म।
हाँ, उसको लिया। देखो अभी 17 नंबर का सूत्र। जोसो ओवसमीयो अविवाग पच्चयो जीव भाव बंधो नाम तस्स इमो निर्देशो। अब औषमिक की बात करेंगे। से उवसंत कोहे, उवसंत माणे, उवसंत माये, उवसंत लोहे, उवसंत रागे, उवसंत दोसे, उवसंत मोहे, उवसंत कसाय वीराय चदुमत्थे, उवसमीय सम्मत्तम, उवसमीयम चारित्तम, जे चामन्ने एवं आदिया उवसमीया भावा सो सवो उवसमीयो अविवाग पच्चयो जीव भाव बंधो नाम। यह औपशमिक भाव अलग अलग बता रहे यहाँ पर। जो औपशमिक अविपाक प्रत्येक जीव भाव बंध है उसका निर्देश इस प्रकार है। उपशांत क्रोध, उपशांत मान। देखो उपशांत क्रोध कब कहेंगे हम?
क्रोध का उदय
उपशम श्रेणी में। उपशांत क्रोध कब कहेंगे हम? पहले भाग में तो वेद का उदय है, दूसरे भाग में क्रोध का उदय है, तीसरे भाग से उपशांत क्रोध कहेंगे, परंतु बाकी अभी उपशांत नहीं हुए हैं, मान का उदय चल रहा है, मान माया लोभ वगैरह है ना। तो कहते उपशांत क्रोध, फिर मान का उपशम होने पर उपशांत मान, उपशांत माया, उपशांत लोभ। उपशांत लोभ कब कहेंगे?
दसवें और ग्यारहवें।
अरे दसवें में सूक्ष्म लोभ है ना, अभी उपशांत कहाँ है? ग्यारहवें में कहेंगे उपशांत लोभ। उपशांत राग, अब राग और द्वेष की अपेक्षा करना है, उपशांत राग। उपशांत दोष, दोष कहाँ है, द्वेष नहीं कहा, दोष कहाँ। उपशांत मोह, उपशांत कषाय वीतराग छद्मस्त, उसी के अलग अलग नाम ले रहे हैं। देखो औषमिक सम्यक्त्व, औषमिक चारित्र। ये औषमिक चार सम्यक्त्व के गुण स्थान कौन से होते हैं मनीषा बेन? बहुत अच्छा, 4 से 11। और औषमिक चारित्र का गुण स्थान
10वां 11वां।
तथा इनसे लेकर और जितने औषमिक भाव है वह सब औषमिक अविपाक प्रत्येक जीव भाव बंध है।
इससे लेकर और कितने हो? और कुछ? इससे लेकर और जितने औषमिक
और जितने भी है वो तो कहेंगे, जो कुछ सूक्ष्म पॉइंट्स है वो सब ले लेंगे, क्योंकि यहाँ औषमिक पुरुष वेद, औषमिक नपुंसक वेद, ऐसे कहाँ बात की है। वो तो वही
वो तो हाँ, हो जाता है पर, वो,
हाँ। देखो देखो पहले में पहले किसकी उपशमना होती है? नपुंसक वेद की होती है, बाद में स्त्री वेद की होती है, बाद में पुरुष वेद की होती है, फिर सात नौ यानी वो पुरुष वेद के साथ छह नौकशाय की होती है। तो ऐसे एक एक पॉइंट अलग अलग बता सकते हैं। देखो अभी यहाँ उसका नीचे पढ़ते हैं। अनिवृत्तिकरण में क्रोध के उपशम से जो भाव होता है वह औषमिक अविपाक प्रत्येक जीव भाव बंध है, क्योंकि वह द्रव्य क्रोध और भाव क्रोध के उपशम से उत्पन्न होता है। देखो कर्म का उदय भी मिट गया है और वहाँ जीव के भाव भी नहीं होते हैं, तो भाव क्रोध का भी उपशम कहने में आता है। उपशांत मान, जीव के जो भाव होता है वह औषमिक अविपाक प्रत्येक जीव भाव बंध है, क्योंकि वह द्रव्य मान और भाव मान के उपशम से उत्पन्न होता है। ये समझ में आता है ना, अभी हर एक के लिए यही फॉर्मूला लगेगा। उपशांत माया, जीव में जो वो जा हुआ है जो भाव होता है वह औषमिक अविपाक प्रत्येक जीव भाव बंध है, क्योंकि वह द्रव्य माया और भाव माया के उपशम से उत्पन्न होता है। देखो उदय का अभाव है वो उपशम है, इसलिए यह सारे उपशमिक ले रहे हैं। क्षायिक की बात बाद में करेंगे। उपशांत लोभ, जीव में जो भाव होता है वह भी औषमिक अविपाक प्रत्येक जीव भाव बंध है, क्योंकि वह द्रव्य लोभ और भाव लोभ के उपशम से उत्पन्न होता है। उपशांत राग, जीव में जो भाव होता है वह औषमिक अविपाक प्रत्येक जीव भाव बंध है, क्योंकि वह माया लोभ हास्य रति और तीन वेद रूप द्रव्य कर्मों के उपशम से उत्पन्न होता है तो ग्यारहवां गुणस्थान अपेक्षा राग उपशमित हुआ है इसकी अपेक्षावश कथन ऐसा आया। उपशांत दोष जीव में जो भाव होता है वह औपशमिक अविपाक प्रत्येक जीव भाव बंध है क्योंकि वह क्रोध मान अरति शोक भय और जुगुप्सा रूप द्रव्य कर्मों के उपशम से उत्पन्न होता है। अच्छा देखो उपशांत दोष उपशांत राग में द्रव्य कर्म लिया और उपशांत दोष में भी द्रव्य कर्म लिया। नहीं नहीं वो तो उसकी बात नहीं मैं कर रही हूँ जो ऊपर और नीचे पहले हमने उपशांत क्रोध वगैरह में द्रव्य और भाव दोनों लिए थे अब यहाँ उपशांत राग में केवल द्रव्य कर्मों के उपशम लिया यानी वो उसमें क्यों नहीं डाला भाव शब्द। भाव शब्द तो होना भी चाहिए परंतु यहाँ कथन करते समय द्रव्य कर्म लिया उपशांत दोष में भी वो उपशांत द्वेष के अर्थ में ही लिया उन्होंने वहां पर भी द्रव्य कर्मों के उपशम से लिया है। अभी आते हैं पेज नंबर 15 पर
तो भाव का तो उपशम हो ही जाता है ना
है ही वहां पर परंतु उनके कथन में उन्होंने नहीं लिया डिफरेंस क्या किया उन्होंने ये मैं बताना चाहती हूँ यानी वो डिफरेंस करने से कुछ भाव दब नहीं गए वो नहीं कहना चाहते। उपशांत कषाय वीतराग छद्मस्थ वो रग हुआ राग छद्मस्थ यानी उपशांत कषाय वीतराग छद्मस्थ जीव में जो भाव होता है यानी ग्यारहवें गुणस्थान वाले को जो भाव है वह भी औपशमिक अविपाक प्रत्येक जीव भाव बंध है क्योंकि वह 25 कषाय रूप द्रव्य कर्मों के उपशम से उत्पन्न होता है। ख्याल में आई बात ये जो औपशमिक सम्यक्त्व है वह भी औपशमिक अविपाक प्रत्येक जीव भाव बंध है क्योंकि वह छपा नहीं है वह 3 प्रकार के दर्शन मोहनीय द्रव्य कर्म के उपशम से उत्पन्न होता है। यहाँ अनंतानुबंधी का जो सदवस्था रूप उपशम है उसको वहां नहीं लिया है गिना नहीं। जो औपशमिक चारित्र है वह भी औपशमिक अविपाक प्रत्येक जीव भाव बंध है क्योंकि वह चारित्र मोहनी की देशोपशमना और सर्वोपशमना से उत्पन्न होता है। चूंकि ये पूर्वोक्त भाव और दूसरे भी अपूर्वकरण अनिवृत्तिकरण सूक्ष्म सांप्राय और उपशांत कषाय गुणस्थानों में प्रत्येक समय में उत्पन्न होने वाले जो जीव के भाव है वह सब औपशमिक अविपाक प्रत्येक जीव भाव बंध है। देखो देखो क्या कहना चाहते हैं अपूर्वकरण को लिया वहाँ कौन सा औपशमिक भाव है चारित्र मुनि की अपेक्षा है ना यहाँ पर औपशमिक चारित्र में लिया उसको
तो आठवें गुणस्थान में तो हर्षरति वैद्य पुरुष का उदय है।
हाँ उपशम किसका है
आठवें गुणस्थान
में यहाँ लिखा ना फिर से पढ़ती हूँ औपशमिक चारित्र है वह औपशमिक चारित्र कहाँ से कहाँ तक कहा है
आठवें से
8, 9, 10, 11 सबको लिया औपशमिक चारित्र
तो आठवें में उपशम किसका लेना
अरे उपशम की तैयारी तो हो रही है ना हर एक समय में। देखो जो औपशमिक चारित्र है वह भी औपशमिक अविपाक प्रत्येक जीव भाव बंध है क्योंकि वह चारित्र मुनि की देशोपशमना और सर्वोपशमना से उत्पन्न होता है। चूंकि ये पूर्वोक्त भाव और दूसरे भी अपूर्वकरण निवृत्तिकरण सूक्ष्म सांप्राय उपशांत कषाय गुणस्थानों में प्रत्येक समय में लिया उत्पन्न होने वाले जो जीव के भाव है वे सब औपशमिक अविपाक प्रत्येक जीव भाव बंध है क्योंकि उपशम श्रेणी में औपशमिक चारित्र स्वीकार किया है क्योंकि वो उपशम के प्रति उसका जो कुछ विशुद्धि बढ़ रही है उसको भी औपशमिक भाव में गिना है और ये अभी यहाँ नहीं है सर्वत्र गिना है पहले भी हमने इसको गुणस्थानों में या लब्धिसार आदि में भी पढ़ा है। देखो अभी नया सूत्र 18 नंबर का जो सो खयो, अभी क्षायिक भावों की बात है, जो सो खयो अविवाग पच्चयो जीव भाव बंधो नाम तस्य इमो निर्देशो। से क्षीण कोहे, क्षीण माणे, क्षीण माये, क्षीण लोहे, क्षीण रागे, क्षीण दोषे, क्षीण मोहे, क्षीण कसाय वीराय सदमत्थे, खय्य सम्मत्तम, खय्य चारित्तम, खय्या दानलद्धि, खय्या लाहलद्धि, खय्या भोगलद्धि, खय्या परिभोगलद्धि, खय्या वीर्यलद्धि, केवल नाणम, केवल दंशनम, सिद्धे बुद्धे परिनिवुदे सव दुखानमंत यड़े ती जे चामन्ने एव मादिया खय्या भावा सो सवो खय्यो अविभाग पच्चयो जीव भाव बंधो नाम। अब नीचे पढ़ते हिंदी में, जो क्षायिक अविपाक प्रत्येक जीव भाव बंध है उसका निर्देश इस प्रकार है, यानी कर्मों का क्षय है, यहाँ जीव के भाव है उसकी बात यहाँ चल रही है। क्षीण क्रोध, क्षीण मान, जैसे हमने उपशम श्रेणी में उपशांतम क्रोध कहा था, यहाँ क्षीण कहेंगे। क्षीण माया, क्षीण लोभ, क्षीण राग, क्षीण दोष, क्षीण मोह, क्षीण कषाय वीतराग छद्मस्थ, क्षायिक सम्यक्त्व, क्षायिक चारित्र, क्षायिक दान लब्धि, क्षायिक लाभ लब्धि, क्षायिक भोग लब्धि, क्षायिक परिभोग लब्धि, क्षायिक वीर्य लब्धि, केवल ज्ञान, क्यों क्षायिक ज्ञान है ना, केवल दर्शन, सिद्ध बुद्ध परिनिवृत्त सर्व दुख अंतकृत। इसी प्रकार और भी जो दूसरे क्षायिक भाव होते हैं वह सब क्षायिक अविपाक प्रत्येक जीव भाव बंध है। अब इसका एक्सप्लेनेशन करेंगे। 16 नंबर के पृष्ठ पर आते हैं। क्षीण क्रोध जीव में जो भाव होता है वह क्षायिक अविपाक प्रत्येक जीव भाव बंध है, क्योंकि वह द्रव्य और भाव क्रोध के सर्वथा क्षय से उत्पन्न होता है। सर्वथा क्षय लिया पर। क्षीण मान जीव में जो भाव होता है वह भी क्षायिक अविपाक प्रत्येक जीव भाव बंध है, क्योंकि वह द्रव्य मान और भाव मान के क्षय से उत्पन्न होता है। क्षीण माया जीव में जो भाव होता है वह भी क्षायिक अविपाक प्रत्येक जीव भाव बंध है, क्योंकि वह दो प्रकार की माया के क्षय से उत्पन्न होता है। लक्ष्मीबेन, दो प्रकार की माया कौन सी है?
पता है?
हाँ,
द्रव्य, नहीं नहीं, द्रव्य माया और भाव,
द्रव्य और भाव। हाँ हाँ, क्षीण लोभ जीव में जो भाव होता है वह भी क्षायिक अविपाक प्रत्येक जीव भावबंध है, क्योंकि वह दो प्रकार के लोभ के क्षय से उत्पन्न होता है, यानी द्रव्य लोभ और भाव लोभ, इस तरह से लेना। क्षीण राग जीव में जो भाव होता है वह भी अविपाक प्रत्येक जीव भावबंध है, क्योंकि वह दोनों प्रकार के माया लोभ हास्य रति और तीन वेद रूप कर्मों के क्षय से उत्पन्न होता है। क्षीण दोष जीव में जो भाव होता है वह भी क्षायिक अविपाक प्रत्येक जीव भाव बंध है, क्योंकि वह दोनों प्रकार के क्रोध मान अरति शोक भय और जुगुप्सा रूप कर्मों के क्षय से उत्पन्न होता है। क्षीण मोह जीव में जो भाव होता है वह क्षायिक अविपाक प्रत्येक जीव भाव बंध है, क्योंकि वह 28 प्रकार के मोहनीय के क्षय से उत्पन्न होता है, जत्पन्न हुआ वो उत्पन्न होता है। ये अलग अलग अपेक्षाओं से उसी के अलग अलग नाम बताए हैं। क्षीण कषाय वीतराग छद्मस्थ जीव में जो भाव होता है वह भी क्षायिक अविपाक प्रत्येक जीव भाव बंध है, क्योंकि वह 25 कषायों के निशेष क्षय से उत्पन्न होता है। जो क्षायिक सम्यक्व है वह भी क्षायिक अविपाक प्रत्ययिक जीव भाव बंध है, क्योंकि वह दर्शन मुनि के क्षय से उत्पन्न होता है। जो क्षायिक चारित्र है वह भी क्षायिक अविपाक प्रत्ययिक जीव भाव बंध है, क्योंकि वह चारित्र मुनि के क्षय से उत्पन्न होता है। जो क्षायिक दान लब्धि है वह भी क्षायिक अविपाक प्रत्ययिक जीव भाव बंध है, क्योंकि वह दानांतराय के निर्मूल क्षय से उत्पन्न होती है। शंका 17 नंबर पर आते हैं। अरिहंतों के दानांतराय का तो क्षय हो गया है, फिर वे सब जीवों को इच्छित अर्थ क्यों नहीं देते? नहीं समझे। दान सबको दान क्यों नहीं देते ना, परंतु नहीं, क्योंकि उन जीवों के लाभांतराय कर्म का सद्भाव पाया जाता है, उनको लाभ में अंतराय ये दान दे सकते हैं। जो क्षायिक लाभ लब्धि है वह भी क्षायिक अविपाक प्रत्ययिक जीव भाव बंध है, क्योंकि वह लाभांतराय कर्म के क्षय से उत्पन्न होती है। शंका, अरिहंतों को यदि लाभांतराय कर्म का क्षय हो गया है तो उनको सब पदार्थों की प्राप्ति क्यों नहीं होती? समाधान, सत्य है उन्हें सब पदार्थों की प्राप्ति होती है, क्योंकि उन्होंने अशेष भुवन को अपने आधीन कर लिया है। जान लिया है ना उन्होंने, सबको आधीन कर लिया। जो क्षायिक भोग लब्धि है वह भी क्षायिक, वो ज्ञायिक दिखता है, क्षायिक अविपाक प्रत्ययिक जीव भाव बंध है, क्योंकि वह भोगांतराय कर्म के क्षय से उत्पन्न होती है। जो क्षायिक परिभोग लब्धि है वह भी क्षायिक अविपाक प्रत्ययिक जीव भाव बंध है, क्योंकि वह परिभोगांतराय कर्म के क्षय से उत्पन्न होती है। फिर शंका, यदि अरहंतों के भोगांतराय और परिभोगांतराय कर्म का क्षय हो गया है तो वे अन्य पदार्थों का उपभोग और परिभोग क्यों नहीं करते? समाधान, नहीं, क्योंकि जो जीव क्षीण कषाय होते हैं उनका उपभोग परिभोग से प्रयोजन नहीं रहता। जो क्षायिक वीर्य लब्धि है वह भी क्षायिक अविपाक प्रत्ययिक जीव भाव भाव हुआ है, भाव बंध है, ब का व करो, क्योंकि वह वीर्यांतराय कर्म के क्षय से उत्पन्न होती है। केवल ज्ञान और केवल दर्शन क्षायिक अविपाक प्रत्ययिक जीव भाव बंध है। देखो, ये केवल ज्ञान को यहाँ भाव बंध लिखा है, जीव भाव बंध, समझ में आता है? वो नो आगम भाव निक्षेप है उसमें, क्योंकि ये क्रमशः केवल ज्ञानावरण और केवल दर्शनावरण कर्म के क्षय से उत्पन्न होते हैं। यहाँ फुल स्टॉप देना। जो सिद्ध भाव है वह भी क्षायिक अविपाक प्रत्येक जीव भाव बंध है, क्योंकि वह आठों कर्मों के क्षय से उत्पन्न होता है। जो बुद्ध भाव है वह भी क्षायिक अविपाक प्रत्येक जीव भाव बंध है, क्योंकि वह अंतरंग और बहिरंग आवरण के क्षय से उत्पन्न होता है। जो परिनिर्वृत्त भाव है वह भी क्षायिक अविपाक प्रत्ययिक है, क्योंकि वह अशेष कर्मों के क्षय से उत्पन्न होता है। परिनिवृत्त यानी अभी फिर दोबारा संसार में नहीं आ रहे, अभी उनके कोई कर्म ही नहीं रहे। सब दुखों का अंतकृत्व भी, अंतकृत कहा था ना, क्षायिक अविपाक प्रत्ययिक है, क्योंकि वह सब दुखों के क्षय से उत्पन्न होता है। ये पूर्वोक्त भाव और दूसरे भी भाव जो प्रति समय उत्पन्न होते हैं वह सब क्षायिक अविपाक प्रत्ययिक जीव भाव बंध है। बुद्ध यानी वो तो केवल ज्ञान हो गए ना, केवल ज्ञान दर्शन, वो बुद्ध कहेंगे। यानी वो अंतरंग और बहिरंग आवरण का क्षय हुआ, कौन से, ज्ञानावरण और दर्शन आवरण का, उसको बुद्ध कहते हैं। अंतकृत यानी उसका नाश हो गया ना, दुखों का अंतकृत्व, दुखों का अंत कर दिया। विशेषार्थ, यहाँ क्षायिक कविपाक प्रत्येक जीव भाव बंध 21 गिनाए हैं और इनके साथ प्रतिसमय होने वाले अन्य क्षायिक भावों की सूचना की है। तत्वार सूत्र में क्षायिक सम्यक्त्व, क्षायिक चारित्र, केवल ज्ञान, केवल दर्शन और 5 क्षायिक लब्धियां, ये कुल 9 भाव गिनाए हैं जो 4 घाती कर्मों के क्षय से होते हैं। यहाँ गिनाए गए भावों में कुछ ऐसे भाव अवश्य हैं जिनका अलग से उल्लेख करना यहाँ आवश्यक है, जैसे सिद्ध भाव, सर्व दुख अंतकृत भाव आदि। शेष का कथनचित अंतर्भाव हो जाता है। यद्यपि 5 लब्धियों का काम बाह्य सामग्री की प्राप्ति नहीं है, किंतु कहीं कहीं उनका काम बाह्य सामग्री की प्राप्ति बतलाया गया है, जो उपचार कथन है। उपचार से क्योंकि उसका वर्णन समझाते हुए हम बाह्य सामग्री की प्राप्ति में, क्योंकि हमारे आपके जो लाभांतराय वगैरह है उसकी बात हम बाह्य सामग्री की अपेक्षा बताते हैं, इसलिए वहाँ अरिहंतों पर भी वो घटित करके बताया उन्होंने। वैसे तो वो 5 लब्धियों का कार्य तो अंतरंग में होगा, वो दान लाभ भोग उपभोग वीर्य अपने ही पर्याय को अपने में ही देना है, बस उसी में वो सब आ जाता है। अब हमने विपाक प्रत्येक देखा, अविपाक प्रत्येक में औक्षमिक और क्षायिक 2 भाव देखे। अब जो तदुभय की बात लेना है, तदुभय में क्या लेना था, क्षोभक्षम, जो सो तदुभय पच्चयो जीव भाव बंधो नाम तस्स इमो निर्देशो, उसका निर्देशन एक कथन इस प्रकार है। अरे वाह, बहुत बड़ा है सूत्र, 2 पेज का है, पढ़ेंगे अभी। खो समयम ए इंद्रिय लद्धित्तिवा, खो समयम बी इंद्रिय लद्धित्तिवा, खो समयम ती इंद्रिय लद्धित्तिवा, खो समयम चौरिंद्रिय लद्धित्तिवा, खो समयम पंचिंद्रिय लद्धित्तिवा, खो समयम मदि अन्नान्नित्तिवा, खो समयम सुद अन्नान्नित्तिवा, खो समयम विहंगनानित्तिवा, खो समयम आभिनिभोय नानित्तिवा, खो समयम सुदनानित्तिवा, वो ती डबल हुआ है, खो समयम ओहिनानित्तिवा, खो समयम मणपज्जव नानित्तिवा। एक क्षायोक्षमिक भाव गिना रहे हैं ना, पहले तो हम केवल क्षायोक्षमिक ज्ञान इतना ही लेते हैं, ज्ञान के 3 और ज्ञान के 4 भेद बताते हैं, परंतु यहाँ एक केंद्रीय लब्धि वगैरह भी वो क्षायोक्षमिक रूप से ले लिए हैं उन्होंने। अब आगे बढ़ते हैं, पेज नंबर 19। खो समयम चक्षु दंसनित्तिवा, खो समयम अचक्षु दंसनित्तिवा, खो समयम वोहि दंसनित्तिवा, खो समयम सम्मा मिच्छत्त लद्धित्तिवा, क्योंकि सम्यक मिथ्यात्व क्षोभक्षमिक भाव है उस गुण स्थान में। खो समयम सम्मत लद्धित्तिवा, खो समयम संयमा संयम लद्धित्तिवा, खो समयम संयम लद्धित्तिवा, क्षोभक्षम चारित्र। खो समयम दान लद्धित्तिवा, खो समयम लाह लद्धित्तिवा, खो समयम भोग लद्धित्तिवा, खो समयम परिभोग लद्धित्तिवा, खो समयम वीर्य लद्धित्तिवा, खो समयम से आयार धरेत्तिवा, खो समयम सुदयड धरेत्तिवा, खो समयम ठाण धरेत्तिवा, खो समयम समवाय धरेत्तिवा। ये किसके नाम है अश्विन भाई, अभी किसकी बात हम पढ़ रहे हैं? अभी हमने जो 3 नाम पढ़े वो किसके है? देखो, आचारांग, सूत्रकृतांग, थानांग, समवायांग, ये अंगों के नाम बता रहे हैं। अभी हमने ठाण धरित्तिवा तक पढ़ा था, खवो समयम समवाय धरित्तिवा, खवो समयम वियाह पन्नत्ति धरित्तिवा, खवो समयम नाह धम्म धरित्तिवा, खवो समयम वोझाय झेण धरित्तिवा। ये अंगों के नाम याद है कि नहीं? यहाँ पढ़ रहे तभी तो पता चलना चाहिए ना। उपासका ध्यान है ना नाम। खवो समयम अंतयड़ धरित्तिवा, खवो समय अनुत्तरोपवादीय दस धरित्तिवा, अनुत्तरोपपादिक दशांग ऐसा होता है। खवो समयम पन्नवागरण धरित्तिवा, हाँ प्रश्न व्याकरण। खवो समयम विवाग सूत्र धरित्तिवा, विवाग सूत्रांग। खवो समयम मियम चाहिए, मीमम हुआ। दिठ्ठिवाद धरित्तिवा, विदृष्टिवाद। खवो समयम गणित्तिवा, खवो समयम वाचगेत्तिवा, खवो समयम दसपूव हरेत्तिवा, खवो संयम चौदसपूव हरेत्तिवा, जे चामन्ने एवं आदिया खवो समय भावा सो सवो तदुभय पच्चयो जीव भाव बंधो नाम। ये सारे क्षौपमिक भाव में सब ले लिए इतने सारे हैं। अब इनको पढ़ेंगे हिंदी में। जो तदुभय प्रत्येक जीव भाव बंध है, तदुभय में क्या है, उदय भी है रूपषम भी है, इस तरह से लेना है। उसका निर्देश इस प्रकार है, क्षायोपशमिक एकेंद्रीय लब्धि। देखो ये क्षायोपशमिक लब्धि जो है वो जो कितना ज्ञान का उघाड़ है उसकी बात है, उसको यहाँ लब्धि कहते हैं। क्योंकि लब्धि उपयोग मिलकर भावेंद्रिय ने क्षोपम ज्ञान दोनों को मिलकर होता है। तो यानी जो हम सम्यक तो प्राप्त पूर्ण होने के पहले जो शोपम लब्धि कहलाते हैं वो जुदी है, और यहाँ जो जिस जो जाति की जितनी जो उघाड़ रूप शक्ति है उसको यहाँ लब्धि कहा है। तो क्षायोपशमिक एकेंद्रीय लब्धि, क्षायोपशमिक द्विंद्रिय लब्धि, यानी उसका ज्ञान का उघाड़ कितना एकेंद्रीय संबंधी है, बाकी सब कैसा है, आवृत है। हाँ, क्षायोपशमिक तीन्द्रिय लब्धि, क्षायोपशमिक चतुरिंद्रिय लब्धि, क्षावश्रमिक पंचेंद्रिय लब्धि, क्षावश्रमिक मत्य ज्ञानी। मनीषा बेन, मत्य ज्ञानी का क्या अर्थ होता है? मति अज्ञानी, त्य शब्द है ना, मति अज्ञानी का मिलकर ती प्लस अत्य होता है, मत्य ज्ञानी। क्षावश्रमिक श्रुता ज्ञानी, श्रुता ज्ञानी में श्रुत अज्ञानी, ये मिथ्या दृष्टि की बात है। क्षावश्रमिक विभंग ज्ञानी, फिर क्षावश्रमिक आभिनिबोधिक ज्ञानी, हमेशा ये सुमति ज्ञान के लिए आभिनिबोधिक शब्द आता है। क्षावश्रमिक श्रुत ज्ञानी, क्षावश्रमिक अवधि ज्ञानी, क्षावश्रमिक मनपरे ज्ञानी। अब दर्शन में लगाएंगे, क्षावश्रमिक चक्षु दर्शनी, क्षावश्रमिक अचक्षु दर्शनी, क्षावश्रमिक अवधि दर्शनी। क्षावश्रमिक सम्यक मिथ्यात्व लब्धि, वह लब्धि में ब और ध ही चाहिए, द नहीं चाहिए आगे फिर, और सम्यक मी बराबर लिखना। मिथ्या वो गी और थ्या हो गया है, इकट्ठा शब्द बराबर लिख देना। क्षावश्रमिक सम्यक्त्व लब्धि, क्षावश्रमिक सम्य दृष्टि कहते ना वो। क्षावश्रमिक संयमासंयम लब्धि, क्षावश्रमिक संयम लब्धि, ये कब होगी क्षावश्रमिक संयम लब्धि? छठे सातवें में, दो में। क्षावश्रमिक दान लब्धि, क्योंकि आठवें से तो औपशमिक संयम कहेंगे। क्षावश्रमिक लाभ लब्धि, क्षावश्रमिक भोग लब्धि, क्षावश्रमिक परिभोग लब्धि, क्षावश्रमिक वीर्य लब्धि। ये क्षावश्रमिक लब्धियां पांच कहाँ तक होगी? बारहवें तक, अनादि से लेकर बारहवें तक। क्षावश्रमिक आचार धर, यानी आचार अंग को धारण करने वाले जो है उस संबंधी जिसके ज्ञान का उघाड़ है उसकी। क्षायोपशमिक सूत्रकृत धर, कृतधर यानी कृत सूत्रकृत धर। क्षायोपशमिक स्थान धर, क्षायोपशमिक समवाय धर, यानी एक एक अंगों के नाम है और उसको धारण करने वाले जानने वाले। क्षायोपशमिक व्याख्या प्रज्ञप्ति धर, क्षायोपशमिक नाथ धर्म धर, वो नाथ धर्म कथा नाम का है उसका। क्षावश्रमिक उपासकाध्ययन धर, क्षावश्रमिक अंतकृत धर, शावश्रमिक अनुत्तरोपपादिक दशधर, शावश्रमिक प्रश्न व्याकरण धर, शावश्रमिक विपाक सूत्रधर और शावश्रमिक दृष्टिवाद धर, शावश्रमिक गणी, अभी गणी वाचक का अर्थ करेंगे, शावश्रमिक वाचक, शावश्रमिक दशपूर्वधर, शावश्रमिक चतुर्दशपूर्वधर, ये तथा इसी प्रकार के और भी दूसरे जो शावश्रमिक भाव हैं वह सब तदुभय प्रत्ययिक जीव भाव बंध है। ये बहुत बड़ी लिस्ट बताई उन्होंने। देखो ये गणी की बात जरा पढ़ लेते हैं, पेज नंबर 22 निकालना। नीचे से 8वीं लाइन है ना, 11 अंग का ज्ञाता गणी कहलाता है और 12 अंग का ज्ञाता वाचक कहलाता है। वो बाकी क्रम से वो सबको बताने ही वाले हैं। अब हम 20 नंबर के पृष्ठ पर आते हैं। अब इस सूत्र का अर्थ कहते हैं। यथा इस सूत्र में सब वा शब्द समुच्चय रूप अर्थ में जानने चाहिए। वो वा वा शब्द है ना वहां पर बीच में, देखो ये मनोपज्जनती वा वगैरह वगैरह वा वा शब्द है, पहले से यहाँ था वा वगैरह वगैरह, हमने यहाँ सबको एक कॉमा कॉमा करके सबको इकट्ठा लिख दिया है। देखो पेज नंबर 20 सेकंड लाइन, एकेंद्रिय लब्धि यह भी क्षायोपशमिक है क्योंकि वह स्पर्शन इंद्रियावरण कर्म के क्षोपशम से उत्पन्न होती है। कुछ जानने रूप को ही नहीं जान रही हूँ, यानी जिसको सर्वघाती देशघाती का, वहां तो देशघाती का उदय है, सर्वघाती का अनुदय है। द्विंद्रिय लब्धि भी क्षोपशमिक है क्योंकि वह जिह्वा और स्पर्शन इंद्रियावरण कर्मों के क्षोभशम से उत्पन्न होती है। तीन्द्रिय लब्धि यह भी क्षोभशमिक है क्योंकि यह जिह्वा स्पर्शन और घ्राण, वो घ्राण हुआ घ्राण, इंद्रियावरण कर्मों के क्षोभशम से उत्पन्न होती है। चतुरिंद्रिय लब्धि यह भी क्षोभशमिक है क्योंकि यह जिह्वा स्पर्शन घ्राण और चक्षु इंद्रियावरण कर्मों के क्षोभशम से उत्पन्न होती है। पंचेंद्रिय लब्धि यह भी क्षोभशमिक है क्योंकि यह पांचों इंद्रियावरण कर्मों के क्षोभशम से उत्पन्न होती है। मति अज्ञानी यह भी क्षोभशमिक है क्योंकि यह मति ज्ञानावरण कर्म के क्षोभशम से उत्पन्न होती है। होता है लिखा है मत्य ज्ञानी है इसलिए होता है कहा। शंका, यह मत्य ज्ञानित्व यानी मति अज्ञानत्व तदुभय प्रत्यय कैसे है? तदुभय ने क्या है, उदय भी उपशम भी, हाँ समाधान। ये मति अज्ञानी यानी वो मिथ्या ज्ञान की बात है ना, मिथ्यात्व के सर्वघाती स्पर्धकों का उदय होने से तथा ज्ञानावरणीय के देशघाती स्पर्धकों का उदय होने से और उसी के ने ज्ञानावरणीय के सर्वघाती स्पर्धकों का उदय क्षय होने से, जिसको हम उदयाभावी क्षय कहते हैं, मत्य ज्ञानित्व की उत्पत्ति होती है। इसलिए वह तदुभय प्रत्ययिक है, यानी ज्ञानावरण का तो क्षोभशम है ही है और मिथ्यात्व का उदय है। यहाँ श्रुता ज्ञानी लिखना, श्रुत ज्ञानी हुआ, श्रुता ज्ञानी तदुभय प्रत्ययिक जीव भाव बंध है क्योंकि यह मिथ्यात्व कर्म के उदय से युक्त श्रुत ज्ञानावरण कर्म के देशघाती स्पर्धकों के उदय से उत्पन्न होता है। विभंग ज्ञानी तदुभय प्रत्ययिक जीव भाव बंध है क्योंकि मिथ्यात्व से युक्त अवधि ज्ञानावरण कर्म के देशघाती स्पर्धकों के उदय से इसकी उत्पत्ति होती है। अभिनिबोधिक ज्ञानी तदुभय प्रत्येक जीव भाव बंध है क्योंकि तीन प्रकार के सम्यक्त्व से युक्त मति ज्ञानावरिणी कर्म के देशघाती स्पर्धकों के उदय से इसकी उत्पत्ति होती है। तीन प्रकार के सम्यक तो कौन से है मनीषा बहन? प्रेरणा बहन, औपशमिक, सार्वशमिक और क्षायिक, क्योंकि अवधि ज्ञान तो तीनों को ही पाया जाता है। शंका, आभिनिबोधिक ज्ञान के उदय प्रत्येकपना बन जाता है क्योंकि मति ज्ञानावरण कर्म के देशघाती स्पर्धकों के उदय से इसकी उत्पत्ति होती है, पर औपशमिक निमित्तकपना नहीं बनता क्योंकि मति ज्ञानावरण कर्म का उपशम नहीं पाया जाता। समाधान, नहीं, क्योंकि ज्ञानावरणीय कर्म के सर्वघाती कर्मों स्पर्धकों के उपशम संज्ञा वाले उदया भाव से आभिनिबोधिक ज्ञान की उत्पत्ति देखी जाती है। हम कहते हैं सर्वघाती कर्मों का अप्रशस्त उपशम है या उसका उदय भाव है, अभाव, उदय का अभाव है, इसलिए इसका औपशमिक निमित्तकपना भी बन जाता है। दोनों एट ए टाइम लेना ना, औपशमिक और उदय, औदय, इस तरह से। यानी देशघाती का तो उदय है और सर्वघाती का
उपशम है,
वो उपशम है। इसी प्रकार श्रुत ज्ञानी, अवधि ज्ञानी, मनपरे ज्ञानी, चक्षुदर्शनी, अचक्षुदर्शनी, अवधि दर्शनी आदि का कथन करना चाहिए क्योंकि उपर्युक्त कथन से, यानी ऊपर के कथन से, इनके कथन में कोई विशेषता, यानी कोई डिफरेंस, कोई अंतर नहीं है। अब सम्यक मिथ्यात्व लब्धि क्षावक्षमिक है क्योंकि वह सम्यक मिथ्यात्व के उदय से उत्पन्न होती है। अब शंकाकार कहते हैं वो तो सर्वघाती है, है? सम्यक मिथ्यात्व कर्म के स्पर्धक सर्वघाती ही होते हैं, इसलिए इनके उदय से उत्पन्न हुआ सम्यक मिथ्यात्व उभय प्रत्येक कैसे होता है, यानी उसको क्षोभसम भाव क्यों कहते हैं? उसको तो उदय कहना चाहिए था। समाधान, नहीं, क्योंकि सम्यक मिथ्यात्व कर्म के स्पर्धकों का उदय सर्वघाती नहीं होता। शंका, वह किस प्रमाण से जाना जाता है? समाधान, क्योंकि सम्यक मिथ्यात्व में सम्यक्त रूप अंश की उत्पत्ति अन्यथा बन नहीं सकती। इससे मालूम पड़ता है कि सम्यक मिथ्यात्व कर्म के स्पर्धकों का उदय सर्वघाती नहीं होता। सम्यक मिथ्यात्व के देशघाती स्पर्धकों के उदय से और उसी के सर्वघाती स्पर्धकों के उपशम संज्ञा वाले उदया भाव से सम्यक मिथ्यात्व की उत्पत्ति होती है, इसलिए वह तदुभय प्रत्ययिक कहा गया है। वो उसी में देशघाती सर्वघाती यहाँ लिख लिए है, परंतु यहाँ क्षोभसम भाव मिथ्यात्व का उदय नहीं है, उसका अप्रशस्त उपशम चल रहा है मिथ्यात्व का, और सम्यक मिथ्यात्व का उदय है, इसलिए भी उसको क्षोभसम रूप, क्योंकि वो तो मिथ्यात्व और सम्यक्त रूप कुछ जात्यंतर भाव है। यहाँ पर मिथ्यात्व नहीं है और सम्यक्त भी नहीं है। सम्यक्त्व लब्धि क्षावक्षमिक है क्योंकि वह सम्यक प्रकृति के उदय से उत्पन्न होती है। शंका, सम्यक प्रकृति के स्पर्धक देशघाती ही होते हैं, उसके उदय से उत्पन्न हुआ सम्यक्त्व तदुभय प्रत्यय कैसे हो सकता है? समाधान, नहीं, क्योंकि सम्यक्त्व के देशघाती स्पर्धकों के उदय से सम्यक्त्व की उत्पत्ति होती है, इसलिए तो वह उदयिक है, और वह औपशमिक भी है क्योंकि वहां सर्वघाती स्पर्धकों का उदय नहीं पाया जाता है। क्या कहना चाहते हैं? ये दर्शन मुनि एक प्रकृति है, तो एक प्रकृति में से तीन प्रकृतियां हुई, उसमें से सम्यक प्रकृति इटसेल्फ देशघाती है, उसके स्पर्धक भी देशघाती है, यानी मिथ्यात्व और सम्यक मिथ्यात्व सर्वघाती है और वो उपशमित पड़े हैं। अब यहाँ क्या कहते हैं देखते हैं। देखो, सम्यक प्रकृति दर्शन मुनि का एक भेद है, उसके सर्वघाती रूप से उपशम को प्राप्त हुए और देशघाती रूप से उदय को प्राप्त हुए स्पर्धकों का वेदक सम्यक्त्व कार्य है, इसलिए वह तदुभय प्रत्येक कहा गया है। यह उक्त कथन का तात्पर्य, कथन हुआ, कथन क्या कहते हैं, दर्शन मोहनीय प्रकृति में सर्वघाती देशघाती लगाना, क्योंकि स्पर्धक कहना है ना, तो सम्यक प्रकृति ये देशघाती स्पर्धक ही है। अन्यत्र जो हम अन्य प्रकृतियों में जो देशघाती प्रकृतियां होती है, ये बंधने वाली प्रकृति नहीं थी, ये बाद में उत्पन्न हुई प्रकृति है। जो बंधने वाली देशघाती प्रकृतियां हैं, उसमें स्पर्धक सर्वघाती भी होते और देशघाती भी होते। और सम्यक प्रकृति वो दर्शन मोहनीय का जो भेद है, वो ऐसी प्रकृति तैयार हुई है कि वो देशघाती ही है, पर दर्शन मोहनीय की जो सर्वघाती है वो उपशमित है और इसका उदय है, इसलिए वो क्षोभशम सम्यक तो वो घटित होता है। इस अर्थ की पहले के और आगे के सब पदों में योजना करनी चाहिए, क्योंकि उभय निमित्तक भावों में इसी की प्रधानता है। यानी ऐसा ही सर्वत्र और भी लगाना चाहिए, यानी क्षोभशम भाव सब में ऐसा ही घटित करना चाहिए। इसी प्रकार संयमा संयम लब्धि, संयम लब्धि, दान लब्धि, लाभ लब्धि, भोग लब्धि, परिभोग लब्धि और वीर्य लब्धि को भी तदुभय प्रत्येक कहना चाहिए। अब जो अंग धरों की बात है, आचार धर तदुभय प्रत्येक जीव भाव बंध है, क्योंकि आचार श्रुत ज्ञानावरण के सर्वघाती रूप से उपशम को प्राप्त हुए, देशघाती स्पर्धकों के उदय से आचार श्रुत की उत्पत्ति होती है। यानी जो आचार अंग के धारक है उसको जानने वाले, उसको उस अंग को जानने रूप शक्ति का उघाड़ है
सर्वघाती,
उसके सर्वघाती हमारे आपके उसके सर्वघाती चल रहे हैं, और जिनको वो आचार अंग की ज्ञाता है उनके वो सर्वघाती तो उपशमित है, देशघाती का उदय चल रहा है। इस प्रकार दृष्टिवाद धर तक के सब पदों का जानकर व्याख्यान करना चाहिए। एक एक अंग पर लगाकर यही बात हो। 11 अंग का ज्ञाता गणी कहलाता है और 12 अंग का ज्ञाता वाचक कहलाता है। इस प्रकार ये क्षौक्षमिक भाव और अति सूक्ष्म दूसरे भी क्षौक्षमिक भाव तदुभय प्रत्येक जीव भाव बंध है। विशेषार्थ यहाँ पर क्षौक्षमिक भाव के भेद बहुत विस्तार से किए गए हैं, फिर भी तत्वार सूत्र में इस भाव के जितने भेद किए गए हैं उनमें इन सब भावों का अंतर्भाव हो जाता है। तत्वार सूत्र में कितने भाव बताए अश्विन भाई? हाँ, वो सोच रहे हैं। वो सोच रहे थे, सोचते
सोचते गलती नहीं की,
कॉन्फिडेंट नहीं थे।
ये 11 अंक का जो ज्ञाता है उसमें वो क्रम से ही ज्ञाता होता है कि
11 ही अंगों संबंधी उसका क्षोभशम चल रहा है। आप पंचेंद्रिय के ज्ञाता हो?
नहीं नहीं,
तो क्रम से यानी पहले कौन सा अंग जाने लगे?
11-12 अंग है, उसमें से 11 अंक का ज्ञाता को उन्होंने गणित कहा, तो उसमें वो कोई भी 11 अंक जान सकता है कि नहीं?
कोई भी 11 नहीं, पहले 11। हाँ, कोई भी 11 नहीं, यानी पहले अंक का ज्ञान हो ही नहीं और दृष्टिवाद का हो जाए ऐसी बात नहीं, ऑप्शनल नहीं है, क्रम से ही लेना है। अब चतुर इंद्रिय की उपलब्धि की है तो कौन से 4 इंद्रिय लेते हैं? क्रम से लेते क्या नहीं? अब ऐसे समझना यहाँ पर। अभी यहाँ हमारे जितने ज्ञान के अलग अलग भेद है ना, ज्ञान का उघाड़ रूप भाव, हम कौन कौन से ज्ञान जानते हैं, कितनी भाषा जानते हैं, वो सब उसमें हम अंतर्भाव कर सकते हैं उसके अंदर। इसलिए सूक्ष्म बहुत सारे भाव निकलेंगे उसमें, पद के ज्ञाता, संघात के ज्ञाता, इस तरह से सब पर लगा लो, ये लगा सकते हैं। जितना हमारे उघाड़ है उतने उसके भेद भी होंगे, ये कहना चाहते हैं। यहाँ बताए ना उसमें अनेक सूक्ष्म भाव हो गए। अब आगे बढ़ते 20 नंबर का सूत्र, जो सो अजीव भाव बंधो नाम सो तिविहो विभाग पच्चयो अजीव भाव बंधो चेव अविभाग पच्चयो अजीव भाव बंधो चेव तदुभय पच्चयो अजीव भाव बंधो चेव चेवम नहीं चेव। अजीव भाव बंध तीन प्रकार का है, विभाग विपाक प्रत्येक अजीव भाव बंध, अविपाक प्रत्येक अजीव भाव बंध और तदुभय प्रत्येक अजीव भाव बंध। मिथ्यात्व असंयम कषाय और योग से या पुरुष के प्रयत्न से जो अजीव भाव उत्पन्न होते हैं उनकी विपाक प्रत्येक अजीव भाव बंध यह संज्ञा है। अजीव भाव बंध ने कर्मों का बंध हो रहे हैं, द्रव्य कर्म उसके किसके निमित्त से हो रहे हैं, जीव के भावों के निमित्त से। और पुरुष के प्रयत्न से, यानी वो निमित्त कौन लिया, पुरुष का प्रयत्न। तो विपाक प्रत्येक अजीव भाव बंध यह संज्ञा है। और जो अजीव भाव मिथ्यात्व आदि कारणों के बिना उत्पन्न होते हैं उनकी अविपाक प्रत्येक अजीव भाव बंध यह संज्ञा है।
मिथ्यात्व ये यहाँ पे योग भी ले लिया तो ये क्या चौदह गुण स्थान वाला जीव
क्या क्या क्या
अभाव से मीन्स
कहाँ अभाव लिया
ये बताए ना क्या अविपाक भाव।
हाँ, उसके कारण नहीं लेना उसमें जीव के भावों के बिना।
तो यहाँ पे तो जीव के भाव में तो मिथ्यात्व अविरति प्रमाद कसा
योग भी लिया ना,
योग भी लिया।
हाँ,
तो यहाँ पे ये
अजीव भाव ने अजीवों के भाव उसकी पर्याय, अजीव की पर्याय, यानी वहाँ कर्मों की कोई ये कर्मों के बाद चल रही है, अकेले कर्म ही अजीव है क्या, अन्य भी जो है ना उसमें जीव के भाव निमित्त नहीं है, जीव के प्रयत्न निमित्त नहीं है, ऐसे ले लेना। पुद्गल के जो स्कंद है जो हमारे निमित्त से नहीं हो रहे उसको क्या कहेंगे, अजीव के भाव है ना वो ना देखो यहाँ कर्मों में भी या पुद्गल में भी औदयिक भाव कहा है कि नहीं, जीव में औदयिक भाव कैसा है तो कर्मों का वहाँ निमित्त पाया जाता है, और जो कर्म स्कंद बने हैं वो क्यों, उसमें जीव का राग निमित्त है। मिथ्यात्व ये सब लेना, मिथ्यात्व संयम कषाय और योग के निमित्त से कर्म बंधे जो है, कर्म में जो भाव होते हैं वो सारे क्या है, उनका विपाक प्रत्येक कहेंगे हम इसको। और ये जो उनके निमित्त से नहीं होने वाले हैं वो अविपाक प्रत्येक कहेंगे।
नहीं तो अजीव भाव हम लोग खाली कर्मों में ले सकते हैं कि
सभी ने पुद्गल की जो जो अवस्था है सब में ले सकते हैं इस और जो दोनों ही कारणों से उत्पन्न होते हैं उनकी तदुभय प्रत्येक अजीव भाव बंध यह संज्ञा है। इस तरह तीन प्रकार का ही अजीव भाव बंध होता है क्योंकि इनके सिवाय अन्य अजीव भाव बंध संभव नहीं है, यानी वो जीव के निमित्त से होने वाले हो गए या बिना जीव के निमित्त से होने वाले हो गए या जिसमें जीव का निमित्त भी है और अन्य भी जो बिना जीव के निमित्त से होते ऐसा भी है। विशेषार्थ यहाँ जीव भाव बंध के समान अजीव भाव बंध भी तीन प्रकार का बतलाया गया है। यहाँ विपाक से पुरुष का प्रयत्न या उसके मिथ्यात्व आदि भाव लिए। देखो वहाँ जीव भाव में जब विपाक कहा था तो कर्म का उदय उदीर्णा लिया था, और जब अविपाक कहा था तो कर्मों के यानी उपशम और क्षय लिए थे, बराबर, यानी कर्मों का कोई उसमें नहीं, अभाव रूप निमित्त लिया था और तदुमय में क्षोपम लिया था। अब कर्मों के लिए यानी पुद्गल के लिए विपाक क्या होगा, तो कर्मों के लिए विपाक यानी जैसे जीव में विपाक क्या लिया तो कर्मों का उदय लिया था, तो कर्मों के लिए पुद्गल के लिए क्या विपाक है, तो जीव के मिथ्यात्व असंयम आदि भाव वो कर्मों के लिए या पुद्गल के लिए वो विपाक रूप उसके कारण होने वाले वो है। अब उनके बिना उसके यानी जीव में क्या हो रहा है, इनके उदय मिट गए और वहाँ कर्मों का जो कुछ खिर जाना आदि जो भाव होगा वो उसके निमित्त से, और तदुभय में जैसे हम कर्मों में क्षोभम लगाते थे वैसे यहाँ पर लगा लेना। और ऐसा है ना जो जीव के भाव कोई कारण ही नहीं है, जो पुद्गल के अन्य स्कंध आदि बनते हैं वो जीव के कारण थोड़े ही बनते हैं, जीव के ना भावों से होता है ना जीव के प्रयत्न से होता है। यहाँ लिखा ना, फिर से पढ़ते विशेषार्थ। यहाँ जीव भाव बंध के समान अजीव भाव बंध भी तीन प्रकार का बतलाया गया है। यहाँ विपाक से पुरुष का प्रयत्न या उसके मिथ्यात्व आदि भाव लिए गए हैं। पुरुष का प्रयत्न ने जो ऐसे ना आप रोटी बनाई तो उसमें पुरुष का प्रयत्न तो निमित्त हुआ ना, ये पुरुष और स्त्री ये भेद नहीं करना है, वह अन्य जीवों के निमित्त से हुए ना, ये जो कोई स्कंद रूप रचनाएं हुई तो कहां पुरुष के निमित्त से, मैंने पुरुष का प्रयत्न या उसके मिथ्यात्व आदि भाव लिए गए हैं। इनके निमित्त से पुद्गल की जो रूप रसादि पर्याय या दूसरी अवस्थाएं होती है वे विपाक प्रत्ययिक अजीव भाव बंध कहलाते हैं। अभी हमने वो चीटियों ने वो तो ये वापी बनाते हैं ना, वो क्या कहते हैं वारुण गुजराती में क्या कहते हैं उसको, दर वो मिट्टी में बनाते, वो क्या कहते दर कहते हैं ना,
हाँ दर
हिंदी में क्या वामी कहते, वामी शायद ऐसा कुछ कहते, सांप उसके बिलों में जाके रहते,
हाँ, दर, दर, दर।
हाँ। शायद हिंदी में वामी कहते होंगे, वामी मराठी में वारुलो कहते, बस इतना मालूम है। अब जो भी अन्य भी ले लो, पुरुष के प्रयत्न से जो हो रहे हैं, हम जो कोई चीजें बना रहे हैं, अब ये पुस्तक बनी, ये जो कुछ ये बने, ये क्या है, ये इसमें पुरुष के प्रयत्न, ये जो इंद्रिय से लेकर भी जो कुछ हो रहे है वो ये सब पुरुष के प्रयत्न से हम ले लेंगे, वो कोई भी जीव है ना उसके प्रयत्न से जो हुए है वहाँ पर, वो रचनाएं हुई वो सारे उसमें ले सकते हैं,
अजीव भाव और पाच द्रव्य में ले सकते हैं। अजीव भाव जो है,
अन्य चार में जीव का क्या निमित्त बनता है,
क्यों गमन
का क्या गमन, गमन जीव में होता है, उसमें क्या होता है, इसमें रूप रसादी पर्याय उसकी अवस्थाएं उत्पन्न होती है, अन्य में तो उनका तो स्वभाव परिणाम चल रहा है। औदयिक भाव तो केवल पुद्गल में ही होता है और जीव में तो होता ही होता है, अन्य द्रव्य में औदयिक भाव नहीं है, तो ये विपाक प्रत्येक हुए। जो पुरुष के प्रयत्न के बिना पुद्गल के बंधरूप विविध प्रकार के परिणमन होते हैं। अभी अन्य द्रव्य में क्या बंधे लगाएंगे हम, वे अविपाक प्रत्येक अजीव भाव बंध कहलाते हैं और तदुभय इन दोनों रूप होते हैं, ये उक्त कथन का सार है। उसकी अधिक चर्चा नहीं की क्योंकि पुद्गलों के स्कंद रूप जो रचना है उसकी बात यहाँ, क्योंकि वो बंध में लेना है ना उसको, अजीव के बंध में क्या लेंगे, उसके स्कंद को ले लेंगे। अब यही रुकेंगे हम, जावाणी के ज्ञान तय सूझे लो पालो सोवाणी मस्तकनम सदा देखहु मैं।